ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणिं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाविदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, so we are reading chapter 7, text 19 onwards. So last time we discussed chapter 7 up to text 19. And we, हम लोग सोच रहे थे कि जो ट्यूसडे का भगवद गीता क्लास है वो हिंदी में करेंगे, एंड सैटरडे प्रोग्राम विल बी रेगुलरली एज यूजुअल इन इंग्लिश फॉर ऑल डिफरेंट ऑडियंस। सो 719 एज अ रीकैप, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसको सही में ज्ञान होता है वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो जो चार तरह के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, जैसे भगवान बता रहे हैं सातवें चैप्टर के 16वें श्लोक में, ये चार तरह के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और कौन कौन से हैं वो लोग, चार लोग? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भारत रश्व। तो चार तरह के लोग क्या हैं? आर्तो, जिसको कोई समस्या है, कोई पीड़ा है। जिज्ञासुर, जिसको कुछ थोड़ी जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने का। अर्थार्थी, जो किसी वस्तु की इच्छा रखता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है भगवान से। और ज्ञानी, जो ज्ञान में स्थित है। तो ये चार तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो वो भजते, भजन से स्टार्ट करते हैं। भगवान कहते हैं भजन्ते, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर शरणागत हैं, भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। भजन से स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। तो भजन्ते से प्रपद्यन्ते स्टेज तक आने में बहुत 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 जन्म बीत जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, तो फाइनली वो भगवान को की शरण ग्रहण करता है। तो उनके पास कुछ आध्यात्मिक, कुछ पायस क्रेडिट हैं, उन्होंने कुछ भक्ति किया है किसी वे में, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कुछ लोगों को कुछ अज्ञात सुकृति होता है,
होता है
जैसे किसी ने
किसी
तुलसी को पानी दे रहे हैं, या किसी को प्रसाद खिलाया, या किसी से प्रसाद लेके खाया, तो उसी तरह से किसी को अज्ञात सुकृति मिलती है। तो ऐसी अज्ञात सुकृति से कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भक्ति करने से, कुछ पायस क्रेडिट जो उनको मिला, तो धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और बहुत जन्मों के बाद जब पूरी तरह से नॉलेज में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, सही ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो समझते हैं कि वासुदेव जो है वो सब कारणों के कारण है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव इज एवरीथिंग, वासुदेव ही सब कुछ है। तो जो इस तरह का जो व्यक्ति है, जो इस तरह का भक्त है, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो महात्मा सुदुर्लभा, तो दुर्लभ जो बोलते हैं कि बहुत रेयर होता है, भगवान यहाँ पर वर्ड यूज कर ले सुदुर्लभा, कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो दे बिकम कंप्लीटली फिक्स्ड इन सर्विस, पूरी तरह से भगवान की शरण में आते हैं, पूरी तरह से भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, प्रपद्यन्ते। तो अभी वासुदेव सर्व सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि या हम किसी को भी सर्व कर सकते हैं। वासुदेव इज एवरीथिंग डजेंट मीन वी कैन सर्व एवरीथिंग। जैसे पैंथियोस्टिक फिलोसफी होती है कि भगवान सब जगह है, तो आप किसी को भी सर्व कर लो, किसी की भी सेवा कर लो, सभी की सेवा कर लो, एक ही बात है। वासुदेव सब जगह पर हैं, पर जो भक्त होता है वो वासुदेव की जो पर्सनल फॉर्म है, जो भगवान का सर्वभूम, उनकी जो फॉर्म है, उनकी सेवा करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम बोल रहे हो विष्णु विष्णु विष्णु, के तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी है। तो प्रहलाद महाराज खंभे की तरफ देख रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो खंभे को नमस्कार कर रहे हैं, उनको खंभे के अंदर भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, उनको भगवान नरसिंह देव के रूप में वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो माला लेकर जा रहे हैं और खंभे को माला पहना रहे हैं, वो माला पहना रहे हैं भगवान को, जो खंभे के अंदर उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जो ज्ञानवान है उनको समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वो वासुदेव की जो पर्सनल फॉर्म है उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर इतना बताने के बाद अगर कोई प्रश्न पूछे कि अगर सब किसी कि अगर सब किसी को इतना ज्ञान है हो कि वासुदेव सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो कृष्ण की सेवा ना करके अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं फिर? तो वो अन्य देवी देवताओं की शरण क्यों ग्रहण करते हैं? तो जो नेक्स्ट तीन चार श्लोक हैं, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? कामैस्तेते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह इसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सत्या श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते। इह ते लभते च त कामान मया एव विहितान हि तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वो सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग मेरी शरण ग्रहण ना करके अन्य देवी देवताओं की शरण क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उनको कुछ भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति करनी है, उनको कुछ भौतिक इच्छाएं हैं जिनकी प्राप्ति करने के लिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार उस पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करते हैं। तो पहली बात इस श्लोक से क्या पता चलता है कि एक परम भगवान है और बाकी सब अन्य देवी देवता हैं। तो भगवान में और देवी देवताओं में क्या अंतर है? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सब एक ही हैं, चाहे हम किसी देवी देवता की पूजा कर लें, चाहे हम काली की पूजा कर लें या दुर्गा की पूजा कर लें या गणेश की पूजा कर लें या कृष्ण की पूजा कर लें, अल्टीमेटली सब एक ही बात है, एवरीबडी इज वन, एवरीबडी इज सेम। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भगवान क्लियर रूप से बता रहे हैं कि मैं सबका प्रभु हूँ और कुछ लोग देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भगवान एक है और बाकी अन्य सब देवी देवता हैं। जैसे कि किसी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर है या एक प्रेसिडेंट है, पर उसके अंदर और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी भी कंट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, आर्मी है, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट्स का कोई ना कोई एक इंचार्ज रहता है, एक हेड रहता है। तो प्रेसिडेंट ओवरऑल पूरी कंट्री को मैनेज करता है इन सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनके थ्रू। तो उसी तरह से ओवरऑल भगवान जो हैं वो एक हैं और बाकी सब जो देवी देवता हैं वो इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट में जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे रोशनी देने का डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, एयर का डिपार्टमेंट है, तो सब उनके अलग अलग इंचार्ज हैं। जैसे इंद्र, इंद्र क्या है? रेन को कंट्रोल करते हैं। सूर्य देव, तो वो प्रकाश को इंचार्ज करते, प्रकाश को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही वायु, वरुण, तो ये अलग अलग देवी देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं और ये सब भगवान के अंडर काम करते हैं इस प्रकृति को, इस सृष्टि को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो अगर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भगवान ने ये सब देवी देवताओं को बनाया ही क्यों? अगर इतने सब देवी देवता हैं इसीलिए सब कंफ्यूजन है, किसी को लगता है कि मैं इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, मैं इसकी पूजा करूं या उसकी पूजा करूं, तो भगवान ने ये सब देवी देवताओं को बनाया ही क्यों? भगवान खुद के समर्थ नहीं थे कि वो पूरी सृष्टि को अपने आप चला सकें। जैसे क्रिश्चियनिटी में आता है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे गॉड इज फुली केपेबल ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग, ही डजंट नीड एनीबडी, उनको किसी और की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंदुइज्म में इतना सब भगवान, इतने सब देवी देवता क्यों बताए गए हैं कि भगवान कुछ खुद समर्थ नहीं है क्या पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए? और वो भी एक दो नहीं, पूरे 33 करोड़ देवी देवता जो बताए गए हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इतने सब देवी देवता हैं इसलिए तो कंफ्यूजन है कि किसकी शरण में जाएं, किसकी पूजा करें। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी सोचें, किसी को कोई चीज खरीदनी है, अगर दुकान से दुकान पे जाए तो उस चीज के 2-3 अलग अलग ब्रांड हो अगर उस दुकान पे, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन सा लूं, ये ब्रांड का प्रोडक्ट लूं या उस ब्रांड का लूं। तो यहाँ पर तो पूरे 33 करोड़ हैं, तो लोगों को नेचुरली कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन क्या है, किसकी शरण में जाना है। तो भगवान ने सबसे पहले तो ये सब देवी देवता बनाए ही क्यों? भगवान ने सब कुछ बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को जैसे लगता है कि सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान उसमें सब उतना उलझ गए कि उनके भी कंट्रोल के बाहर हो गया. एंड दैट्स वाई कृष्णा ही नीडेड अदर देवी देवता टू हेल्प हिम टू कंट्रोल दिस मटीरियल यूनिवर्स, दिस होल अफेयर. तो ऐसा नहीं है, भगवान पूरी तरह से निरासक्त हैं. वो अपनी प्रकृति में खुद कभी उलझते नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए. वो अपने वृंदावन धाम में अपनी लीलाओं में रहते हैं, उनको इसकी सब इसको चलाने के लिए जो भी काम करना है उसकी जरूरत नहीं है. देन उसको कौन चला रहा है? देन कृष्णा सेज मया अध्यक्षेन प्रकृति तू ही अते सचराचरम. जो जो मेरी भौतिक प्रकृति है वो इस सब सृष्टि को इसका सब देखभाल कर रही है और मेरे देखभाल में काम कर रही है. मया अध्यक्षेन मेरी अध्यक्षता के अंदर वो काम कर रही है. सो एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू कृष्णा. जैसे किसी कंपनी में कोई सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या कोई मैनेजर भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस सीईओ को अपनी कंपनी में सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सीईओ आएगा और वो बटन दबाएगा और तो मशीन चलेगी. सो अंडर सीईओ देयर आर मेनी पीपल इन द फैक्ट्री हु आर वर्किंग. सो सीईओ जस्ट गिव्स डायरेक्शन दैट दिस इज द डेडलाइन, दिस इज द प्रोजेक्ट व्हिच नीड टू बी फिनिश्ड, एंड ऑल अदर पीपल आर वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज चार्ज. सो सेम वे कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स. भगवान ने सब सृष्टि का रचना किया और उसका जो चार्ज है वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड को दिया कि आपको ये सब संभालना है. भगवान सिर्फ इच्छा प्रकट करते हैं और पूरा काम हो जाता है. कृष्णा जस्ट नीड टू डिजायर एंड ऑल द वर्क इज डन. तो भगवान ने देवताओं को बनाया क्यों? तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन आते हैं कि देवी देवताओं की सृष्टि क्यों की भगवान ने. तो पहली चीज तो जो ये देवी देवता भी हैं वो हैं कौन? वो भी भगवान के भक्त हैं. जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं एक एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, कि भगवान सिर्फ कृष्ण है बाकी सब उनके सेवक हैं. तो जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं पर उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं. वो भी इस पूरी सृष्टि में कुछ अपना नेम एंड फेम, कुछ पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं. तो भगवान कहते हैं कि अच्छा आपको कुछ पोजीशन चाहिए तो मुझे तो वैसे भी ये काम करना है, तो आपको मैं ये वाली पोजीशन देता हूँ, आप इस पोजीशन पे ये कार्य करिए और इससे आपका नेम एंड फेम भी होगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा. तो भगवान अलग अलग जो भक्त हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं उनको उस पोजीशन के ऊपर बिठाते हैं. जैसे इंद्र हो गया, तो इंद्र को ये पोजीशन मिला कि आप सब देवताओं के लीडर हो, कि आप देवताओं के भी राजा हो और आप ये बारिश को कंट्रोल करो. तो ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग पोजीशन देते हैं भगवान कि आप इस पोजीशन पे रह के ये कार्य करो, इस सृष्टि को चलाने में आप सहायता करो, क्योंकि उनकी इच्छा है कुछ पोजीशन प्राप्त करने की. जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं इस एग्जांपल को, अगर हम मंदिर की एग्जाम्पल लें, तो अभी मंदिर है, मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, तो अभी मंदिर को चलाना है. जो मंदिर का इंचार्ज है जैसे महंत हो गए या टेंपल प्रेसिडेंट हो गए, तो उनको मंदिर चलाना है और बाकी सब भक्त हैं, तो उन सब भक्तों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है. अच्छा आप गेस्ट वेलकमिंग की सेवा करो, आप भगवान के लिए भोजन बनाने का काम करो, आप ये मंदिर को साफ सफाई करने का काम करो, इसका इंचार्ज देखो. तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा में लगा दिया जाता है. तो उसी प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो उनके अलग अलग भक्त हैं पर उनकी कुछ इच्छाएं हैं, तो उनको उस पोजीशन पे बिठा देते हैं कि आप ये सब कार्य करो. तो इसकी इस रीजन से भगवान ने देवी देवताओं की रचना की. तो अब जो हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक सिस्टम है, उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि अलग अलग तरह के लोग अपने अलग अलग स्तर पर रहते हुए भगवान की भक्ति तक पहुंच सकें. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑल इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट, कि सबको अंदर लेकर चलते हैं, किसी को बाहर रखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल इंक्लूसिवनेस। जैसे जो सात्विक पुराण है उनमें बताया जाता है कि आप भगवान विष्णु की भक्ति करो, जो राजसिक पुराण है उनमें बताया जाता है कि ब्रह्मा की भक्ति करो, जो तामसिक पुराण है वो उनमें बताते हैं कि भगवान शिव की भक्ति करो। तो हमारे जो 18 पुराण हैं उसमें 6 पुराण सात्विक पुराण आते हैं, 6 पुराण राजसिक पुराण और 6 पुराण तामसिक पुराण। तो तामसिक पुराण का मतलब ये नहीं है कि पुराण तामसिक है, उसका मतलब है कि तामसिक पुराण उन लोगों के लिए है जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक पुराण उन लोगों के लिए हैं जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग और अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति के बारे में या उनकी तरफ इंडिकेशन दिया गया है। अगर कोई तमोगुण में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते, वो तो उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है शास्त्रों में कि आप ऐसा करो, आप इस देवी देवता की पूजा करो ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सको। उसको और समझने के लिए जैसे उसका उदाहरण लीजिए कि किसी चीज को करना गलत है पर उस चीज की आदत को छुड़वाने के लिए थोड़ा कंसेशन दिया जाता है। सपोज कोई व्यक्ति सिगरेट पीने का बहुत आदी है, दिन में 40-50-50 सिगरेट पीता है, इतनी उसको लत लगी हुई है सिगरेट पीने की, और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको बताएगा कि सिगरेट पीना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। पर डॉक्टर को भी पता है कि ये एक दिन में छोड़ नहीं पाएगा, कि ऐसा नहीं है कि 50 सिगरेट से बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, उसको इतनी ज्यादा लत लगी हुई है। तो डॉक्टर क्या बताएगा कि आप 50 से कम करके 40 पे आओ, 40 के से कम करके 30 पे आओ। तो धीरे 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 उसको वो घटाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है 50 से आप 30 पे आओ, तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया क्योंकि उनको पता है कि ये पूरी तरह से एकदम से छोड़ेगा नहीं, तो उनको कंसेशन दिया। पर अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिजिबल राइट हो गया उसका कि अच्छा डॉक्टर ने मुझे बोला है 30 पी सकता हूं तो 30 पीना तो जायज है। तो कंसेशन इज गिवन बट इट डजेंट मीन दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड। तो उसी तरह से भगवान की ओर बढ़ने के लिए जो पूरा अभी भौतिक इच्छाओं से युक्त है उसको कंसेशन दिया जाता है कि ठीक है आपको अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए ये प्रावधान दिया गया है शास्त्रों में, आप इस पर्टिकुलर देवी या देवता की पूजा करो जिनसे आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। और दूसरी तरफ एक रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन मतलब इफ यू डू दिस दिस इज गुड फॉर यू। जैसे हेल्दी डाइट, किसी को रिकमेंड किया जाता है कि आप हेल्दी डाइट खाइए स्वस्थ रहने के लिए, आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, आपको तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन है। तो अगर कोई उस रिकमेंडेशन को नहीं ले सकता तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है। तो रिकमेंडेड है कि परम भगवान भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अगर बस उस रिकमेंडेशन को नहीं ले सकते तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया गया है कि ठीक है अगर आप उस स्तर पे नहीं हो अभी तो आप इसकी भक्ति करो ताकि धीरे 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 आप आगे बढ़ सको। तो हम भगवान के बच्चे हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ कृष्णा, बट समहाउ वी हैव लेफ्ट एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। तो हम अपने जो पोजीशन है हमारा भगवान के धाम में उससे हम भटक गए हैं, और अगर भगवान हमें वापस बुलाना चाहते हैं पर हम किसी ना किसी रीजन से भगवान के साथ नाराज होकर इस जगत में आए हैं और इस जगत में हम भटक रहे हैं और भगवान हमें वापस बुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर हम सीधा सीधा भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते तो फिर भगवान कुछ इनडायरेक्ट मेथड ढूंढते हैं कि इनको किसी तरीके से तो वापस लाया जाए। जैसे अगर एक राजा का बेटा है, कोई राजकुमार है, कोई वो अपने फादर से जो राजा से रूठ कर महल छोड़कर चला गया, तो राजा उसको बहुत तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम वापस आ जाओ, महल में वापस आ जाओ, तो यहाँ पर सब सुख सुविधा है, यहाँ पर आराम से रहोगे। पर जो राजकुमार है वो अपने पिता से रूठकर महल छोड़कर चला गया, और किसी भी ढंग से उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर नहीं हो पा रहा, और वो वापस महल में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो वापस अपने राज्य में जा रहा है महल से बाहर निकलकर, और वहां पर भटक रहा है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इधर उधर धक्के खा रहा है। ना उसके पास पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े हैं, ना ही भोजन है करने के लिए, तो इधर उधर भटक रहा है। अगर अब राजा उसको सीधे सीधे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है तो वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा क्या करता है कि अपने किसी मंत्री को भेजता है कि तुम मेरे बेटे के पास जाओ और उसकी सब जरूरतों को पूरी करो, पर उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने भेजा है, क्योंकि वो मुझसे नाराज होकर गया है। अगर तुमने बताया कि मैंने भेजा है तो शायद स्वीकार नहीं करेगा। तो तुम उसको जाकर उसकी जरूरतें पूरी करो। और अभी वो मंत्री जाता है, उसकी सब जरूरतें भी उसको सप्लाई करता है, कपड़े दिए, खाने के लिए वस्तुएं दी। तो राजकुमार को लगता है कि ये मंत्री ही अच्छा है, ये मेरी सब जरूरतें पूरी कर रहा है, मेरा कितना ख्याल रख रहा है, मुझे अपने पिता से कोई मतलब नहीं है। तो वो मंत्री की सेवा में, मंत्री के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करता है, मंत्री की सेवा में लग जाता है। तो वैसे ही भगवान ने ये सब देवी देवताओं का प्रावधान बनाया कि तुम मेरे पास नहीं वापस आना चाहते, चलो किसी अन्य देवी देवता की पूजा करो, उनके साथ रिलेशन डेवलप करो, और उनसे तुम्हारी, उनके थ्रू तुम्हारी जो भौतिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। पर जो सही है, जो सही स्तर है, वो है कि हमें किसी भी अगर वस्तु की जरूरत है, चाहे हमें मटेरियल डिजायर्स हैं, चाहे मुक्ति की इच्छा है, चाहे भोग करने की इच्छा है, तो सब चीजों के लिए परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिनको भौतिक इच्छाएं हैं वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या भगवान कृष्ण हमारी भौतिक जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, पर तुम्हें इतनी जल्दी लगी हुई है अपनी जरूरतें पूरी करने की। यू वॉन्ट टू फुलफिल योर डिजायर इन अ शॉर्ट मैटर ऑफ टाइम, क्विकली। दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर डिजायर सो क्विकली, दैट्स वाई दे गो टू देवी देवता, क्योंकि देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो उनकी जरूरतें जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो देवी देवताओं की पोजीशन है, अगर कोई देवी देवताओं की उपासना करता है तो देवी देवता उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। दैट इज लाइक अ बिजनेस डील। किसी ने उनके लिए कुछ किया तो उनको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान पहले शुद्धिकरण करते हैं, लॉर्ड कृष्णा विल फर्स्ट प्योरिफाई अस, देन ही विल गिव व्हाट वी नीड। जैसे ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज भगवान के पास क्यों गए कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, उनके पिता के पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनको ये भौतिक इच्छा थी, इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु की उपासना, उनकी भक्ति करते करते उनके हृदय में इतनी पवित्रता आई, भगवान ने पहले उनका पूरा हृदय साफ कर दिया, जो उनके अंदर ये सब काम वासना थी, भौतिक इच्छाएं थी। और जब इच्छाएं पूरी तरह से खत्म हो गई, भगवान उनके सामने दर्शन दिया, ध्रुव महाराज से पूछा अभी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। भगवान का दर्शन लेने के बाद ध्रुव महाराज ने बोला नहीं अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो टूटे हुए कांच के पीछे भाग रहा था, पर अभी मुझे हीरा मिल गया है, साक्षात आपके दर्शन हुए, साक्षात आपकी भक्ति मिली है, तो अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने पहले तो उनका हृदय निर्मल किया, और फिर जब हृदय पूरी तरह से साफ हो गया तो उन्होंने उनको सब कुछ दे दिया जो उनको पहले चाहिए था। बहुत बड़ा राज्य दे दिया उनको, पूरा ध्रुव लोक दे दिया, उनके नाम से एक लोक बना दिया। तो भगवान इच्छाएं पूर्ण करते हैं, पर पहले शुद्धिकरण करते हैं, पहले ये समझो कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर बिना शुद्धिकरण के हमें कोई चीजें मिल जाती हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, वी डोंट वैल्यू दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन वी मे मिस यूज दैट। पर देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास अगर कोई जाता है उपासना करता है तो वो दे आर
जाने
बाउंड टू गिव यू द रिजल्ट लाइक अ बिजनेस डील। अगर बच्चा माता पिता के पास आता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, माता पिता बोल सकते नहीं चॉकलेट खाना अलाउड नहीं है, तुम्हारे दांत देखो कितने खराब हो रहे हैं, कैविटी हो रही है, यू आर नॉट अलाउड टू ईट कैंडी। पर आगे वही बच्चा $2 लेके शॉपकीपर के पास जाए, स्टोर पे जाए, उसको $2 दे और बोले मुझे ये वाला चॉकलेट दे दो। नाउ विल द शॉपकीपर से, दुकानदार तो ये नहीं बोलेगा कि अरे बेटा पहले अपने दांत दिखाओ, तुम्हारे दांत में कोई कैविटी तो नहीं है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता ने खाने के लिए मना तो नहीं किया, डॉक्टर ने तुम्हें चॉकलेट खाने के लिए मना तो नहीं किया। तो जो दुकानदार है वो सब ये नहीं पूछेगा, दुकानदार को अपना पैसा मिला तो ही इज बाउंड टू गिव यू इन एक्सचेंज। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ देवी देवताज। तो देवी देवताज को अगर कोई उपासना करता है तो वो रिजल्ट देने के लिए बाउंड है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जिनको बहुत भौतिक इच्छाएं हैं और वो अपनी भौतिक इच्छाएं जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। पर अभी अगले दो श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भौतिक इच्छाएं भगवान ये सब देवी देवता पूरी तो कर रहे हैं पर अल्टीमेटली हो कैसे रहा है। पहली चीज तो अगर कोई किसी देवी देवता की उपासना करना चाहता है तो उसके अंदर श्रद्धा भी मैं ही पैदा करता हूँ उस पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति। आई एम द वन हु गिव्स फेथ इन दैट पर्टिकुलर देवी देवता। और देवी देवता भी अपनी तरफ से कुछ भी रिवॉर्ड देने के लिए केपेबल नहीं है, देवी देवता जो भी रिवॉर्ड देते हैं वो भी मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान बता रहे हैं जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे कि वो उस देवता की उपासना कर सके। और फिर भगवान बताते हैं कि जो भी उनकी इच्छा की पूर्ति होती है वास्तविकता में वो सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। तो जिसकी भी कोई किसी के प्रति किसी की थोड़ी सी श्रद्धा होती है भक्ति करने की, भगवान उस श्रद्धा को स्थिर करते हैं। किसी की भी पूजा करने के लिए कुछ तो थोड़ा फेथ होना चाहिए, कुछ तो श्रद्धा होनी चाहिए, तो उस श्रद्धा को अनशेकेबल अचल श्रद्धा भगवान बनाते हैं। कृष्णा इज सो काइंड, ही इज नॉट रिजेक्टिंग द डेमीगॉड वर्शिप, देवी देवता की उपासना को वो नकार नहीं रहे हैं और ना ही वो उन लोगों को नकार रहे हैं जो भौतिक इच्छाओं के साथ इन देवी देवताओं की उपासना करना चाहते हैं। कृष्णा उनको ये नहीं है कि मेरी ही पूजा करें, मेरी ही उपासना करें, ही डज नॉट हैव दैट सेल्फ सेंटर्ड आइडिया और इगोइस्टिक आइडिया। ही इज ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट एवरीबडी, इवन इफ समबडी हैज मटीरियल डिजायर दे वॉन्ट टू वर्शिप एनी देवी देवता, कृष्ण इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। नहीं तो जनरली क्या होता है कि किसी को अपना सेल्फ सेंटर्ड आइडिया होता है कि एवरीबडी शुड अप्रोच मी, एवरीबडी शुड वर्शिप मी, एवरीबडी शुड ग्लोरीफाई मी, बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट हियर। जैसे किसी ऑफिस में अगर कोई बॉस है और बॉस चाहता है कि सब लोग मुझे जाने, एवरीबडी शुड नो मी, तो वो अपने किसी चापलूस एम्प्लॉय को बुलाएगा और बोलेगा कि सबको बताओ मेरे बारे में। एंड दैट एम्प्लॉय अगर वो अपने बॉस की चमचागिरी करना शुरू करे, उसको ग्लोरीफाई करना शुरू करे, उसके बारे में बताना शुरू करे कि अरे ये बॉस तो ऐसे हैं ऐसे हैं, एक्चुअली ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। पर अगर सीईओ खुद वहां पर आ जाए जब वो एम्प्लॉय उस मैनेजर की या उस बॉस की तारीफ कर रहा है, सो दैट सीईओ विल बी वेरी मैड, वो बहुत ही गुस्से में हो जाएंगे कि हाउ डेयर यू आर कॉलिंग हिम सीईओ, आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, ही इज नॉट कंसर्न्ड वट एवर वेदर पीपल रिकॉग्नाइज हिम और पीपल डोंट रिकॉग्नाइज हिम, वेदर पीपल वर्शिप हिम और नॉट वर्शिप हिम, बट ही गिव्स फेथ इन दैट पर्टिकुलर देवता टू वर्शिप हिम। सो कृष्णा इज कंसर्न्ड अबाउट फैसिलिटेटिंग द एलिवेशन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो भगवान का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे कोई धीरे 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 ऊपर बढ़ सके। तो अभी फिर से प्रश्न आ सकता है कि भगवान इन देवी देवताओं में विश्वास क्यों क्रिएट कर रहे हैं। वाई ही इज अलाउइंग द फेथ इन दीज देवी देवताज सो दैट दे फॉल इन ट्रैप ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी। कि वो इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उसी में उलझे रहते हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। तो भगवान ये अलाउ ही क्यों कर रहे हैं, पहले तो देवी देवताओं को बनाया ही क्यों, फिर बनाया तो अभी उनके अंदर श्रद्धा क्यों डाल रहे हैं, लोगों के अंदर की उनके प्रति श्रद्धा क्यों पैदा कर रहे हैं। तो आंसर सीधा सीधा जैसे प्रभुपाद भी परपट में बता रहे हैं, इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हैं, उनको सबकी इच्छाएं पता हैं, तो वो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर वो इसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे बल्कि जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक किसी को अपनी ओर ही लेके आने की का प्रयत्न करेंगे, देन देर इज नो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लव इज नॉट इम्पोज ऑन अदर्स, लव इज नॉट बाय फोर्स, लव इज बाय चॉइस। सो कृष्णा गिव्स द चॉइस, डू यू वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स मी और यू वॉन्ट टू जस्ट फुलफिल योर मटीरियल नीड्स विद इन दिस यूनिवर्स। जैसे और रीजन इसका क्या है कि भगवान देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों क्यों बढ़ा रहे हैं, उसको समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे माता पिता होते हैं, वो बच्चों को गुड्डे गुड़ियों से खेलने के लिए देते हैं, दे विल ब्रिंग द डॉल्स एंड लेट देम प्ले विद डॉल्स, शावर देयर अफेक्शन टूवर्ड्स द डॉल। तो बच्चे उन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, डॉल्स के साथ उनके प्रति अपना अफेक्शन शो कर रहे हैं, दे कंसिडर दोज डॉल्स लाइक रियल बेबीज। तो अभी माता पिता को पता है कि ये तो सिर्फ गुड्डे गुड्डी हैं, तो वो उन बच्चों को गुड्डे गुड्डियों के प्रति अफेक्शन पैदा करने के लिए क्यों दे रहे हैं। दैट इज इन वन सेंस एज इग्नोरेंस, बट स्टिल दे एनकरेज द चाइल्ड टू प्ले विद दोज डॉल्स, एनकरेज द चाइल्ड टू शावर देयर लव एंड अफेक्शन विद टूवर्ड्स दोज डॉल्स। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि माता पिता को पता है कि धीरे धीरे इनके अंदर वो अफेक्शन लव और केयर वाली भावना पैदा होगी उनके साथ खेलते खेलते, विच विल बी बेनिफिशियल एज दे ग्रो अप। तो उसी तरह से जो सब लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी सब जीव हैं, तो जैसे वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, पर उनको किसी के अंदर श्रद्धा पैदा हो रही है, विश्वास पैदा हो रहा है। तो भगवान समझते हैं कि उनका ये विश्वास धीरे धीरे बढ़कर एज इट विल इवॉल्व, इट विल कम अपवर्ड, दे विल फाइनली कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज वन सुप्रीम गॉड, देर इज वन सुप्रीम फादर एंड वी नीड टू मूव टूवर्ड्स हिम। तो वापस उस एग्जाम्पल पे आए, जैसे राजा का एक उदाहरण दिया था कि राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि राजकुमार की सब जरूरतें पूरी करो, और उस राजकुमार को पहले तो मंत्री के अंदर श्रद्धा हुई कि ये मंत्री ही सब कुछ मुझे दे रहा है, ही इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। पर धीरे 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 उसको फाइनली पता चलता है कि ये मंत्री भी मेरे पिता से, राजा से लेके आ रहा है, राजा ही इनको दे रहे हैं, तो वो वास्तविक में मेरे पिता हैं और वो ही मेरे वेल विशर हैं। तो उसको वापस अपने पिता के प्रति लव एंड अफेक्शन पैदा होता है, एंड देन ही वांट टू गो बैक टू हिज फादर। तो उसी तरह से देवी देवताओं की पूजा करते करते फाइनली जब किसी को ज्ञान होता है सही तरीके से, तो वो भगवान की भक्ति के स्तर पर आता है। इसलिए भगवान पहले बोल रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। तो यहां पर देवी देवताओं को भी कौन एम्पावर कर रहा है इच्छाएं पूरी करने के लिए सब जीवों की, वो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे थ्रू ही वो सब कुछ जरूरतें जो जितना भी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, वो भी मेरे ही थ्रू हो रही हैं। कृष्ण इज द वन हु एक्चुअली गिव्स द रिजल्ट। So in interest of time, I think I will stop here. It's already 9:40. We will continue the next verse next time, where I will just read the verse. Antavantu palamtesha tat bhavati alpamedasa devan devayajaha devan devayajaha janti mat bhaktayanti mamapi। जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जस्ट ब्रीफली मेंशनिंग, तो इस जो भगवान बता रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, लेस इंटेलिजेंट पीपल, दे गो टू देवी देवता टू फुलफिल देयर डिजायर्स। तो भगवान उनको अल्प बुद्धि वाले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो जो देवताओं से फल मिलता है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। देवताओं से जो भी फल प्राप्त हुआ वो इस भौतिक जगत तक ही सीमित है। देवता उनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। द रिजल्ट ऑफर्ड बाय देवताज आर टेम्परेरी इन नेचर, चाहे वो ब्यूटी हो, वेल्थ हो, स्ट्रेंथ हो, बच्चे हो, घर बार हो, तो दिस ऑल आर टेम्परेरी। जैसे किसी को कुछ क्विकली रिजल्ट प्राप्त करना है, स्कूल में बच्चे को होमवर्क मिला तो उसने सोचा कि मैं होमवर्क जल्दी जल्दी से खत्म कर दूं, इधर उधर से कॉपी करके, और ताकि मैं बाद में पूरा समय खेल सकूं। तो उसने किसी से कॉपी करके होमवर्क को अपना खत्म कर लिया जल्दी से, तो उसको होमवर्क का रिजल्ट तो मिल गया जल्दी से, पर लॉन्ग टर्म में जब एग्जाम का टाइम आया, उसने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, होमवर्क हर समय बस इधर उधर से कॉपी करके जल्दी से ऐसे सबमिट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? उसको अंडरस्टैंडिंग तो हुआ नहीं सब्जेक्ट का, उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए नहीं है, तो एग्जाम में क्या होगा? फेल हो जाए। तो एक जगह पर तो उसको थोड़ा क्विक रिजल्ट मिल गया, पर लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? उसका रिजल्ट वो टेम्परेरी था। उसी तरह से देवी देवताओं के पास जाते हैं जब अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए, तो टेम्परेरी रिजल्ट तो मिल जाता है, मतलब रिजल्ट तो मिल जाता है पर वो टेम्परेरी है। और दूसरी चीज भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो अंत में उनका रिजल्ट क्या मिलेगा? वो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आएंगे। तो यहां पर एक चीज और क्या भगवान क्लियर कर रहे हैं कि सब जो रास्ते हैं वो सेम गोल पे नहीं पहुंचते हैं। ऑल पाथ डोंट लीड टू सेम गोल। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अरे किसी की भी पूजा कर लो, चाहे तुम इस देवता की पूजा कर लो, चाहे उसकी पूजा कर लो, तुम बोलते हो मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं राम का भक्त हूँ, या मैं गणेश का भक्त हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ, तो अल्टीमेटली सब एक ही बात है। इट्स नॉट सेम थिंग। ऑल पाथ डोंट लीड टू सेम गोल। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस वर्स इन मोर डिटेल नेक्स्ट टाइम। सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Anybody has any comments, questions, discussion?
Thank you, Prabhuji. Very nice lectures.
Thank you, Prabhu. Any questions, comments?
Hare Krishna, Prabhu.
Hare Krishna.
Yeah, the thing is, when we worship, when we do the sacrifice or worship to demigods, we also do in the similar way, we also do worship to Vishnu or Krishna. So there is many particular worship we do with expectation from Krishna or Vishnu. So those are also materialistic. Like if I want some material benefit, I can also do them. There is always a way in the Vedas to do it. And there is a result both also. So like how we do worship to demigods, we get results. The same way when we do worship to Vishnu, Krishna, so we get results. So the both of them, demigods and also Krishna, they both are reciprocating in similar way, like a give and take only, at that stage. Okay? Even a pure devotee or any other devotee, a normal devotee who go and do the puja, so he will get the benefit even if we do puja to Vishnu or Krishna. Because they both have the similar qualities. So when we approach both of them, like demigods or Supreme Lord, they have the similar qualities. And also, it becomes like any sacrifice you do, it becomes like a part of the sacrifice is also going to the Supreme Lord, Vishnu. Part of the sacrifice is also going to demigods. Like example, if I do worship to demigods, I also worship Supreme Lord in that. When I worship Supreme Lord, directly asking for something, even that time also I worship the demigods. So we can't differentiate so easily.
We cannot differentiate here, but Krishna is saying is if somebody is worshipping the Devi Devatas in the ninth chapter, the same topic, Krishna will further take it to next level. So Krishna is explaining that even if somebody is worshipping any Devi Devata, indirectly they are worshipping me only, but they are doing so in the wrong way. Ki wo puja to meri hi kar rahe hain, par dharam bhi kaise kar. तो फल मिलता है चाहे देवी देवताओं की पूजा करने से मिल रहा है या डायरेक्टली भगवान की भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की पूजा करने से मिल रहा है जो फल मिल रहा है उनको भगवान के ही थ्रू मिल रहा है ऐसा नहीं है कि देवी देवता अपनी तरफ से उनको इंडिपेंडेंटली कुछ रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं रिजल्ट भगवान के ही पास से आ रहा है क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा है उसमें भगवान की भी पूजा इंक्लूडेड है और उसका प्रावधान ही इसलिए बनाया गया ताकि उनको धीरे धीरे समझ में आए कि अल्टीमेटली एक्चुअली में भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए जैसे अगर गणेश की भी पूजा कर रहे हैं तो या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग कृष्ण की ही पूजा से होता है जैसे स्टार्टिंग में मंत्र आएगा ओम केशवाय नमः एंड में फिर से मंत्र आएगा ओम गोविंदाय नमः या केशवाय समर्पयामि गोविंदाय समर्पयामि तो स्टार्टिंग में और एंड में परम भगवान का ही पूजा का मंत्र है बीच में जो है वो अन्य सब देवी देवताओं के पूजा के मंत्र हैं उनको प्रसन्न करने के मंत्र हैं तो इट्स लाइक अ सैंडविच ऊपर से ब्रेड का लेयर है और बीच में कुछ मक्खन लगा हुआ है तो उसी तरह से ऊपर
इतना तक तो पता चला है मगर हम जब कृष्णा और विष्णु को पूजा करते हैं ना तब भी हम गणेश से स्टार्ट करते हैं सो व्हेन वी कोई सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं तो भी गणेश को करते हैं और हम सभी दिक्पालकों को करते हैं पूजा और उनके बाद हम सभी तटी त्रिकोण देवता को पूजा करते हैं उनके बाद ही हम विष्णु को पूजा करते हैं So, वो भी वो प्रोसेस में भी whether we worship Vishnu directly also we are going through this process like we are worshiping demigods and going to worship Vishnu or if we worship demigods also we include Vishnu so basically we cannot differentiate so easily in either way we worship both of them
so the differentiation is only in the way that if we are worshiping the Devi Devatas then Lord Vishnu's worship is included in beginning and ending to indicate that ultimately everything is coming from Vishnu. But if somebody is directly approaching Lord Vishnu, it is not mandatory that they have to go through all these different Devi Devatas. One can directly worship the Supreme Lord. Again, that is the Karamkanda way of worship, that somebody has to worship the other Devi Devatas first. Like people will worship the Navagraha, or they will install Ganesha first. Now, why Ganesha has become the first worshipable? What is the reason? Ganesh ji ko पहले पूज्य माना जाता है. उसका भी रीजन ये है क्योंकि गणेश जी ने भगवान के चरणों में शरण लिया है. भगवान के चरणों की शरण लेने की वजह से ही उनको परम पूज्य की उपाधि मिली है. इट कम्स इन रामायण एक्चुअली हाउ गणेशा बिकेम द फर्स्ट वर्शिपेबल बिकॉज बाय टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड राम, बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम, ही हैज बिकम एलिजिबल टू बी फर्स्ट वर्शिपेबल.
Prabhu, thank you for the explanation.
And the other reason when I was describing that Bhagwan ne sab devi devatao ko banaya, so unko banaya to sahi ki theek hai, you want to take some position, you want to get some benefit, but now the demigods or these devi devas are still at concern, but who will worship us, right? You have created us, given us this position, but still why people will worship us? They will directly approach you, why they will come to us? So Krishna said, for people to recognize you, people to worship you, I will worship you. So when I am worshipping you in my leela, then people will think, oh, this personality is very powerful, or this personality is can give some benefit, so they will come to you. So Krishna in his leela, in some of the pastime, Krishna worship in his various avatars, Krishna or Lord Ram, they worship different Devi Devatas. They are seen in some time. Like in Lord Krishna's pastime, when the Shyamataka jewel is stolen and the blame comes on Krishna. Right? So Rukmini and Krishna, they are worshipping Ganesh to remove the obstacle. So Krishna has declared that, okay, I'm creating your position, but I myself will worship you, so people will get attracted to you, to worship you. So that is also to give benefit to the devatas. Krishna is doing that. Because they are also his devotee only, but right now they are not very pure devotee without any desires at all. They also have desire. They want to get some name and fame, some benefit, some followers. So Krishna provides that also.
Okay. Just to keep their position of the value, we just do it. Okay, Prabhu. Thank you.
Hare Krishna Prabhuji, do you have a time for one question or no?
Sure, Mataji.
Like in this only as a follow-up of this, like when we are doing our daily prayers and others, so like when we do the aarti, so can we generally like after doing it to Gaur Nithai and then we do Radha Krishna and then Jagannath, Gopal Gopal, all that, and then can we after Guru Maharaj, can we do it to the demigods, the aarti, that will be like a as an offering, or is it not advisable?
No, you can offer. Means you can offer it to, like in temple. I will give you the example in our temple here in Detroit, right? So after, outside of Srinathji altar, there is Ganeshji and Hanumanji altar is there. So the devotee or pujari who are offering the all the different paraphernalia to all these personalities, Radha Kunj Bihari, Jagannath Baldev Subhadra, then Bal Gopal Srinathji. So they will offer to Ganeshji and Hanumanji also. So there is no restriction in that way, that you should not offer any respect to them. So I keep stressing on this point again and again. When we understand the concept of Devi Devata and the Supreme Lord, yes, there is a difference. Bhagwan ek hai, par Devi Devata bahut sare hai. Par uske baad aisa nahi hai ki, achha, main toh Bhagwan Krishna ka hi bhakt hoon, mujhe ye Devi Devataon se kuch lena dena nahi hai. I will not even pay obeisances to them. I don't want to offer respect to them. So one should not become a fanatic like that, because we should offer due respect to everybody. And considering Devi Devatas is a very special position, they have been assigned to those positions by Krishna himself, and it's a very respectable position, so we should offer respect. We should not neglect them or blaspheme them. So offering different ingredients, different paraphernalia of aarti is also a way of showing respect to them. So jaise aapke ghar pe prime minister aaye, aur prime minister ke saath uska secretary hai, uska alag kuch aur minister bhi hai uske saath mein, तो आप बोलोगे कि मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को एंटरटेन करूंगा, मुझे उसके मंत्रियों से, उसके जो उसके साथ कोई और हैं, उनके से कोई मतलब नहीं है. यू डोंट इवन ऑफर देम अ चेयर टू सिट, और यू डोंट ऑफर देम इवन अ ग्लास ऑफ वाटर. सो दैट इज इंसल्टिंग टू देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी स्पेशल पीपल हु आर अकॉम्पनिंग द प्राइम मिनिस्टर. सो सेम वे सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु इज देयर. And all these different Devi Devatas, they are also his representative. So we should offer due respect to them. Not criticize them, not blaspheme them, not neglect them. Ek bar ek devotee ka mera personal experience hai. Sometime devotee become very fanatic. So Diwali ke time pe, jaise log Lakshmi Narayan ki puja karte hain. So his comment was, like it may be like completely inattentive or just without thinking. So the response was ki baki sab log Lakshmi Narayan ki puja karte hain, Lakshmi Narayan jaye bhaad mein, hum to Radha Krishna ki puja karte hain. So now that is a very radical comment, that Lakshmi Narayan jaye bhaad mein, hum to Radha Krishna ki puja karte hain. In one sense there is no difference. But devotees sometimes become fanatic and they start considering all these Devi Devata ki ye sab aise tuch hain. Hum bhakt hain, hum to Bhagwan ki bhakti karenge, hum to sirf Krishna ko manenge. So one should not become like a fanatic like that, because that become offensive.
Yes, Prabhu, so, thank you so much. Yeah. So Prabhuji, ghar mein bhi waise hi kar sakte hain na fir? मतलब टेंपल का आपने बताया, तो घर में भी वैसे हम फॉलो करते हैं तो वो ठीक है, राइट?
या मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम ऑल्टर पे जो देवी देवता हैं उनको भगवान के बराबर नहीं रखते हैं. इफ समबडी रियली वांट टू पोजीशन समबडी, लेट्स से गणेश जी हैं, शिव जी हैं, तो वी कीप देम वन स्टेप लोअर देन द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. दैट इज द सिस्टम.
Right.
But if somebody wants to offer them incense, lamp, yeah, you can offer them. After offering to the Lord, you can offer them also.
Okay, that's it.
अभी जैसे जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है, जगन्नाथ पुरी में भगवान का जितना भी प्रसाद है भोग जगन्नाथ जी का, तो वो पीछे पार्वती देवी जी को अर्पित ऑफर होता है, एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज महाप्रसाद. There is a detailed pastime why this happened and all that. But same way in other temples also, जो भगवान का प्रसाद है वो पहले लॉर्ड शिवा को भोग लगाया जाता है और उसके बाद फिर महाप्रसाद के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है.
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग. आपने अच्छी तरह से समझा दिया. थैंक यू. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. विद ऑल दिस टॉक, वन शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके आई कैन वर्शिप द देवी देवतास, दैट्स ऑल फाइन. द पॉइंट इज व्हेन समबडी इज ऑलरेडी एट अ लेवल ऑफ भक्ति ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, then there is no need to go step down and start worshipping the different Devi Devatas. Ki sab alag alag Devi Devataon ki upasana karne lago. Because Devi Devataon ki upasana ka, jaise Bhagwan ne bataya ki alag purpose hai, logon ko dheere 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 upar ke star tak leke aane ka. Abhi hume ye sunne ke baad aisa nahi sochna chahiye ki chalo main star se utar ke niche chala jata hu. और भगवान क्लियर कट यहाँ पर बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा जो लोग कर रहे हैं वो अल्प मेदशा है, लेस इंटेलिजेंट है. सही में जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए भी तो मैं परम भगवान के पास ही जाऊंगा, कि मेरी सब जरूरतें भगवान के थ्रू पूरी हो सकती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देवी देवताओं की उपासना करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो तो भगवान के थ्रू ही आ रहा है, तो डायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा में लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं। So, if anybody has any other question, comment quickly. Otherwise, we'll stop the call here. Okay. So, thank you very much. Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai.